गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। गीता के श्लोक का पाठ करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। साधु किसे कहते हैं, ऐसा सवाल अर्जुन के चित्त में उठा है। स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा। स्थिति प्रज्ञ पुरुष कैसे रहता है, उसका कैसा आचरण होता है, वो बोलते कैसा है, वो चलता कैसा है, वो लेता देता कैसा है, बैठता कैसा है, उठता कैसा है। तो भगवान ने प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मैवात्मनः तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्तदोचते करते हुए भिन्न भिन्न उस महापुरुषों के लक्षण बताए, जो वैदी भक्ति, गौणी भक्ति, रसात्मक भक्ति से भी पार ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। और ये जरूरी नहीं कि हर ब्रह्मज्ञानी के जीवन में तुकाराम की ना ही भोजन सामग्री तैयार करने की रुचि और हो, ये जरूरी नहीं। ये जो चमत्कार होते हैं तुकाराम जी महापुरुष के जीवन में या मीरा के जीवन में या और किसी संत महापुरुषों के जीवन में, तो भक्ति प्रधान संतों के जीवन में जो चमत्कार होते हैं वो भगवान की लीला है, भक्त का भाव संपन्न हो जाता है। योग प्रधान किसी पुरुष के जीवन में अगर कुछ अलौकिक घटना घटती है तो ये योग सिद्धियों की शक्ति। और ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी के जीवन में ऐसा कुछ होता है तो प्रकृति अपने आप लीला कर लेती है। उच्च कोटि का भक्त, उच्च कोटि का योगी और उच्च कोटि का ज्ञानी कभी इन उपलब्धियों को मेरी नहीं मानता, कभी इन उपलब्धियों से अपने को बड़ा नहीं मानता और कभी इन उपलब्धियों के लिए वो भजन योग या साध तत्व ज्ञान नहीं पाता, अपितु ये उपलब्धियां हो जाती है तो हो जाती है, नहीं भी हुई तो भक्त को आकांक्षा नहीं रहती। स्थिति प्रज्ञ पुरुष को इन चीजों से कोई लगाव नहीं रहता। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिसकी मन से सारी कामनाएं मिट गई। मन से कामनाएं मिटने पर इतना आदमी महान होता है कि उसका बयान करते करते शास्त्र वेद थक जाते, उसकी महानता का कोई पार नहीं। आदमी तब तक छोटा होता है जब तक उसमें कामनाएं भरी है। जितनी जितनी कामनाएं उसकी क्षीण होती जाती है उतना उतना वो निष्काम नारायण स्वरूप में एक रस होने लगता है। चाह चमारी चुहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूरन ब्रह्म था जो चाहन होती बीच। तो कुछ कामनाएं ऐसी होती है जो आदमी को अच्छे रास्ते लगाती है और कुछ कामनाएं ऐसी होती जो बुरे रास्ते लगाती है। तो बुरे रास्ते की अपेक्षा अच्छे रास्ते लगाने वाली कामनाएं ठीक है, लेकिन आगे चल के अच्छा और बुरा ये दोनों छूट जाता है। आदमी जब पूर्ण निष्काम होता है तो अच्छे में अच्छा जो परब्रह्म परमात्मा स्वभाव है वो उसका जागृत हो जाता है। और उस परमात्मा स्वभाव में जब आदमी जग जाता है तो उसके लिए प्रकृति का हो, भगवान की लीला का हो, योग की शक्तियां का हो, उसके अनुकूल हो जाती। जैसे राज्य सिंहासन मिलने पर राज्य की सुविधाएं, नौकर चाकर सब अपने राजा के इर्द गिर्द अपने को अच्छा कहलाने के लिए लग जाते हैं या करते हैं अपनी ड्यूटी समझकर। ऐसे तुम अगर निष्काम हो जाते हो तो बाकी का कार्य प्रकृति और प्रकृति के अनुचर सब करने लगेंगे, फिर जो होना चाहिए वो होने लगेगा और जो नहीं होना चाहिए वो रुकने लगेगा। ऐसे पुरुष के नजीक बैठने से हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को भी लाभ मिलता है। जो होना चाहिए ऐसा भाव लाखों आदमी का होने लगेगा उस पुरुष की हाजिरी मात्र से। एक निष्काम पूर्ण निष्काम ब्रह्मवेता अगर हमारे बीच बैठा है तो हम व्यर्थ की गपशप नहीं कर सकते। हम उस ब्रह्मवेता महापुरुष के निकट बैठे हैं तो व्यर्थ का इधर उधर झांक नहीं सकते, व्यर्थ का हम खा नहीं सकते और व्यर्थ का हम पी नहीं सकते, और हम अनायास ही एक दो घंटा तीन घंटा उनके हाजिरी में संयमी हो जाते हैं। बिना मेहनत अपने आप तीन घंटा चुप बैठो तो मुश्किल हो जाएगा। अपने आप तीन घंटा खाओ पियो इधर उधर करो तो इंद्रियों के झपेटे में आ जाओगे, लेकिन उन महापुरुषों के चरणों में बैठने से दो तीन घंटा तो इंद्रियों में जीने वाला आदमी भी संयमी हो जाता है। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि यह निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। संपूर्ण मनुष्यों की जो रात्रि है उसमें संयमी मनुष्य जगता है, और जिसमें साधारण मनुष्य जगते हैं वह तत्ववेता को वह तत्व को जानने वाला मुनि मुनि की दृष्टि में वह रात्रि हो जाती है। जिस खान पान में भोगने में लेने में देने में संग्रह करने में बदला लेने में साधारण आदमी सही सजाग है उन चीजों में मुनि सोता रहता है। कोई बात नहीं हो गया, कोई बात नहीं, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए कोई बात नहीं। और जिस परमात्मा को छोड़कर संसारी लोग परमात्मा के विषय में तत्वों के विषय में उनको कोई पता ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, जिसमें संसारी लोग सो रहे हैं उस आत्म परमात्मा के ज्ञान में मुनि जगता है, और जिसमें संसारी लोग खूब सतर्क हैं सावधान हैं रुपया में पैसा में लेने में देने में बदला लेने में दोस्तों से राजी रखने में वार त्योहार को संभालने में वारा तारा ये वो सब, उसमें वो ब्रह्मवेता उदासीन है, और जिसमें संसारी लोग उदासीन है उसमें वो ब्रह्मवेता जगता है। या निशा सर्वभूतानाम या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने सा निशा पश्यतो। संपूर्ण मनुष्यों की जो रात्रि है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें साधारण मनुष्य जागता है कुशलता रखता है उन बातों में तत्ववेता तत्व को जानने वाला मुनि की दृष्टि में वह रात्रि है। सारा संसार अविद्या से बना है, स्वप्ने जैसा है। जेम स्वप्नानी वस्तु लेने कोई जागी शके नहीं, तेम संसार ना राग द्वेष ने पकड़ी ने कोई आत्म परमात्मा ने पामी शके नहीं। स्वप्ने हो भिखारी नृप रंक नाकपति हो जागे लाभ न हानि कछु तिम प्रपंच जिय जग सो। जैसे स्वप्ना रैन का तैसा ये संसार, जागो लोको मत सुओ ना करो नींद से प्यार। जैसे स्वप्ना रैन का तैसा ये संसार, आंख खुलने से ही आदमी जगता है ऐसी बात नहीं। आंख खुलने से तो शरीर जगता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने से आदमी जगता है अन्यथा से। तुलसीदास जी कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा देख ही स्वप्ने अनेक प्रकारा। ये मोह की रात्रि में सब लोग सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्ने देख रहे हैं। जिस शरीर में जाते हैं जन्म लेते हैं उस बच्चे को तो पता नहीं, घर वाले खुशियां मनाते हैं बेटे का जन्म हुआ है। एक साधक ने गुरु को खत लिखा के बाबा जी मेरे घर बेटे का जन्म हुआ। बाबा जी साधक के जीवन में ब्रह्म ज्ञान लाना चाहते थे। बाबा जी ने कहा तू झूठ बोलना कब से सीखा है, तारा घरे बेटा नो जन्म थयो छे तद्दन खोटी वात छे जूठू बोले छे। ते छोकरो परणेलो छोकरो दीकरा नो बाप थयेलो लौकिक जग रीते, પણ એને ખબર નહીં કે ગુરુ મહારાજ મને લૌકિક નિશામાંથી જાગૃત કરી અને અલૌકિક તત્વમાં જગાડવા માટે આ ઉત્તર આપે છે કે બાપુ હું જૂઠું નથી બોલતો ને સંતની આગળ જૂઠું બોલવાથી તો મહાપાપ લાગે હું હવે મારા ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો છે બાપુએ કીધું જૂઠી વાત છે દીકરાને ખબર જ નથી કે દીકરાનો જન્મ થયો છે બેટે કો પતા હી નહીં કે મેરા જન્મ હુઆ હૈ દીકરા આને સે બાપ કા જન્મ હુઆ ઉસકે પહેલે તુજે કોઈ બાપ નહીં કહે સકતા થા અબ તુ ફલાને કા બાપ હો ગયા બેટા આને કે બાદ દાદી કા જન્મ હુઆ ઉસકે પહેલે તેરી માં કો કોઈ દાદી નહીં કહેતા થા બેટા આને કે બાદ નાની કા જન્મ હુઆ માસી કા જન્મ હુઆ મામી કા જન્મ હુઆ મામા કા જન્મ હુઆ ચાચી કા જન્મ હુઆ ચાચા કા જન્મ હુઆ બેટા આને સે તેરા ભાઈ ચાચા હો ગયા ઓર તેરી ભાભી ચાચી હો ગઈ ઇન કયો કા જન્મ હો ગયા ઓર જિસકો બોલતે બેટે કા જન્મ બેટે કા જન્મ બેટે કો તો પતા ભી નહીં લેકિન ઇસ મોહ કી નિશા મે તુમ બડે ચતુર હો ઓર બરાબર કહેતે હો કે બેટે કા જન્મ હોતા ઓર સબ લોગ માન લેતે કે બેટે કા જન્મ હુઆ વાસ્તવ મે બેટે કા જન્મ તો તબ હુઆ જબ બેટા સમજે કે મેરા જન્મ હુઆ જય રામ જી કી तो इस व्यवहार की निशा में तो तुम सतर्क हो लेकिन हम जो परमार्थ के दिन में आपको जगाना चाहते हैं उसमें बेटा जागना तुम्हें बाकी है। एक मोह हो गया है कि मैं फलाना हूं नाम रख दिया फिर मैं फलाना हूं पक्का हो जाता है फिर ये फलानी वस्तु मेरी है फलाना मित्र मेरा है फलानी जात मेरी है फलाना भाई मेरा है फलाना बाप मेरा है और फलाना मामा मेरा है फलानी मामी मेरी है फलाना सासू मेरा है फलाना ससरा मेरा है फलाना गांव मेरा है फलाना देश मेरा है फलाना दोस्त मेरा है फलाना दुश्मन मेरा है लेकिन ये फलाने फलाने मेरे मेरे जिससे दिखते हैं उस चैतन्य आत्मा को मेरा है और मैं उसका हूँ ऐसा ज्ञान पाने वाला धन्य हो जाता है। समुद्र तो एक ही एक अरब के नीचे लहलाता है तो अरबी समुद्र हो जाता है बंगाल की खाड़ियों के इधर लहलाता है तो बंगाली समुद्र हो जाता है और हिंद महासागर कहलाता है हिंद में लहराता है तो इस प्रकार समुद्र तो एक का एक अलग अलग जगह पर लहराता है उसके नाम अलग अलग पड़ जाते हैं ऐसे ही तुम्हारा सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा तो एक का एक है लेकिन आंखों से उसकी चेतना काम करती तो तुम समझते मैं देखता हूँ कानों से सुनने की सत्ता उस परमेश्वर की है तुम अड़ंगा जमाते हो मैं सुनता हूँ नाक से सूंघने की चेतना उसी की आती तुम्हारा आम बोलता मैं सूंघता हूँ जीभ से चखने की चेतना वहीं से आती जीभ बोलती आप बोलते हो कि मैंने चखा है मन को सोचने की सत्ता वहीं से आती है और आप बोलते मैंने सोचा है बुद्धि निर्णय उसी की सत्ता से करती है लेकिन आप सोचते हो कि मेरा निर्णय है निर्णय बदल जाते फिर भी सत्ता वह रहती है दृश्य बदल जाते फिर भी सत्ता वह रहती है शब्द बदल जाते फिर भी सत्ता वह रहती है मन बदल जाता है फिर भी सत्ता वह रहती है लोग बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध के मैदान में जीत गया लेकिन वो कब जीतता है पता है वो युद्ध करते समय इतना तो युद्ध में तदाकार हो जाता है कि उसका मैं खो जाता है उसका मैं खो जाता है मनो यंत्र की पुतली की नाई आगे दसता जाता है और उसे सफलता पर सफलता मिलती है और व्यवहार में दिखता भी उसको सफलता मिल रही है लेकिन वो उसका जब मैं हटता है और उसका चैतन्य उस युद्ध के कर्म के भूमि में उतर आता है पूरा उसके अहम की परतें चीरकर जब उसकी वृत्ति वहां चली आती है कर्म में तो जीत होती वृक्ष में ग्राहित्व शक्ति है लगता है कि वृक्ष बड़ा हो रहा है लेकिन वृक्ष में ग्राहित्व शक्ति जो है वो तुम्हारे चैतन्य की है मनुष्य में कर्म की शक्ति है वो चैतन्य की है मन में सोचने की शक्ति वो परमात्मा की है लेकिन मन अगर मोह में आ जाता तो मेरा बेटा दुखी हो जाएगा मेरा मकान मेरी जाति जब आदमी मैं और मेरे की छोटी दीवारें तोड़ता है अथवा कर्म में ऐसा लग जाता कि मैं और मेरे की दीवारें नहींवत हो जाती है तब उसके द्वारा बड़े बड़े काम होने लगते हैं और कार्य करने की थकान भी नहीं होती अच्छे अच्छे निर्णय होते हैं और जब मैं और मेरा आ जाता है तो अच्छे आदमी से भी छोटे छोटे निर्णय होते हैं एक मजदूर है बंदर पर बोरे सी रहा है उठा के खड़क रहा है काम करता जा रहा है करता जा रहा है, लेकिन काम करते समय वो अपने को भूला हुआ है। 12 बज गए, दूसरे लोग छुट्टी पर छूट गए, लेकिन उन दो चार आदमियों को तो ऐसा होड़ लगी है कि करते जा रहे कि थोड़ा है करते जा रहे। फिर दूसरे लोग आते कि अरे कब खाओगे, एक बज गया है, 12 की विसल पूरी हो गई, अब तो एक बज गया है, तुम क्या कर रहे। उनको याद आता कि हाँ देह में आ गए, थकान होती है, छोड़ दो अब थक गए। क्योंकि जब देह में आए तो देह के गुण धर्म तुम्हारे चित्त पर प्रभाव डालते हैं, और काम करते करते देह होते हुए भी काम में इतने तल्लीन हो गए कि देह को तुमने भुला दिया, तो मजदूरी का काम भी तुम्हें आनंद देता है। कबड्डी खेलते हो, कबड्डी से क्या खाक मजा आता है, क्रिकेट से क्या खाक मजा आता है, लेकिन क्रिकेट खेलते खेलते खिलाड़ी अपने मैं और मेरे को अनजाने में ही मैं और मेरे को भूल जाता है तो बढ़िया दाव उसकी सफल होती है, विकेट वो जीत लेता है, और दर्शक देखते देखते ए ए ए ए करते करते अपने मैं को इस शूद्र अहम को भूल जाता है, तभी अंदर से आत्मा से आनंद आता है। खिलाड़ी दर्शकों को आनंद नहीं देते, खिलाड़ी की तो केवल खेल में तदाकारता होती है, और दर्शक उसको देखते देखते मैं और मेरा भूलता है, तब आनंद स्वरूप उस परमात्मा का होता है। नर्तक नृत्य करता है, नृत्य करते करते जब चतुराई से नृत्य करता है तो उसका नृत्य रसहीन हो जाएगा। नृत्य करते करते जब नृत्यमय हो जाता है, नृत्य में नर्तक हो जाता है, नर्तक का मैं और मेरा, उसके द्वारा नृत्य बढ़िया होता है। बच्चा क्यों प्यारा लगता है पता है आपको? तुतली भाषा बोलता है, बोलने का ढंग नहीं, माँ को माँ ठीक से नहीं बोल सकता है, गुरु को गुरु बोल देता है, फिर भी प्यारा लगता है। क्यों? कि उसका मैं अभी सुषुप्त है। वो तोतली भाषा बोलता है, बड़े बड़े साहबों का मन मोहित कर लेता है, फिर चाहे वो नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे देसी हो, परदेसी हो, नन्ना मुन्ना सबको प्यारा लगता है, और वो शहनशाह के नाई खेलता रहता, आकाश से बातें करता रहता है, लातों पर लातों घुमाता रहता है। बड़े बड़े लोग उसके सौंदर्य के, उसकी मिठास के गुलाम हो जाते, बेचे को लेते हैं, और कुछ नहीं बेटा तो किसी को आमंत्रित नहीं करता है, लेकिन आया गया मेहमान बेटे के गाल पर हाथ रख देता है, उसके तरफ निहार के उसकी खुशामद करने लग जाता है, क्योंकि बेटा इस समय अनजाने में स्थूल मैं और मेरे से, मोह निशा से अनजाने में अभी थोड़ा पार है, अभी उसे मोह निशा ने घेरा नहीं, अभी मैं मेरा, ये हमारी वस्तु, ये हमारा घर, ये हमारा मकान, ये हमारी जाति, ये अभी निशा में उसने प्रवेश नहीं किया। प्यारा लगता है, थकान मिटाने वाला हो जाता है। उस बच्चे को लोग उठाते हैं और वो शहनशाह होकर पिचकारी मार देता, उसको कोई परवाह नहीं और कोई दोष भी नहीं, चलो बाहर है, छी करे चली, साहब भले कपड़ा पोंछता रहे, लेकिन वो शहनशाह की नहीं जीता है। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ये खिलौने मेरे हैं, ये मम्मी मेरी है, डैडी मेरा है, डेरा मेरी है, जब ऐसा आ गया फिर वो डांटने के काबिल हो जाता है, दुखी होने के काबिल हो जाता है, अशांत होता है। खिलौनों में मोह होता है तो उसकी अशांति होती है, मैं मेरे में मोह होता है, ज्यो ज्यो मैं मेरे का मोह पनपता है त्यों त्यों उसको अशांति, भय, चिंता घेरने लगती है, वो स्वर्गीय सुख से नीचे आ जाता है। और फिर जब भजन करते करते, कीर्तन करते करते, या और कोई कर्म करते करते अनजाने में मैं और मेरा भूलता है, तब परमात्मा चेतना का आनंद उसके नसीब में होता है। तो कुछ साधन ऐसे हैं कि अपने को सताकर मैं और मेरे को भुलाया जाए। जैसे शराबी शराब पीता है तो अपने को सताता है, इससे मैं और मेरा थोड़ा दब जाता है, उसको थोड़ा सा निश्चिंतता आती है, लेकिन ये रास्ता गलत है, आगे चल के शराबी को ज्यादा सहन करना पड़ता है। ऐसे ही दोस्तों के साथ चले गए घूमने, मूड चेंज करने के लिए टीवी चालू कर दी, फिल्म चालू कर दी, अपनी चिंता को अपने मैं मेरे को उस गुमराह करने के साधनों में लगा दिया। ऐसा आदमी गुमराह होता रहता है, लेकिन जिसको सत्संग मिलता है, सत्य स्वरूप ईश्वर से प्रीति होती है, तो अहम उसका ईश्वर में लीन होते ही ईश्वरीय तत्व का उसे प्रसाद मिलने लग जाता है। उसका फिर ईश्वर के मार्ग में जाने से उसका बाह्य मोह और ममता समेट कर ईश्वर में मोह होने लगता है, और ईश्वर में मोह होना मोह नहीं होता है, वो प्रेम का रूप ले लेता है। बाहर की चीजें तो मर जाती है, कुटुंबी मर जाते हैं, वस्तुएं मर जाती है, लेकिन ईश्वर नहीं मरता। ईश्वर शाश्वत है तो उसका मैं और मोहरा ईश्वर के शाश्वत स्वरूप के तरफ चलता है, तो धीरे धीरे जो ईश्वर के शाश्वत तरफ चलता है तो उसको ईश्वर तत्व का ज्ञान की रुचि होती है, ईश्वर के ध्यान की रुचि होती है। और देर सवेर ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब संत मिल जाते हैं तो बता देते हैं कि ईश्वर तेरे से दूर नहीं, वो तुझसे दूर नहीं, तो उससे दूर नहीं, तत्वमसि वो तू साक्षात चैतन्य आत्मा। मैं के पर्दे को गुरुदेव हटा देते हैं। बीकानेर में एक ऐसे अनूठे संत हो गए जिनका देह का मैं और मेरा इतना गल गया था, लोग संपर्क नहीं करते थे, मस्ती से घूमते थे, आत्मज्ञान हो गया था, उनके स्वभाव में आ गया जो हो रहा है प्रारब्ध से यार की मौज। आखिर लोग असली नाम उनका भूल गए, उनको यार की मौज करके बुलाते थे, को महाराज जैसे घाट वाला बाबा, घाट पे रहता है तो घाट वाला बाबा, ऐसे वो यार की मौज कहने वाले बाबा का नाम पड़ गया यार की मौज। वो यार की मौज बिकाने में घूमते घामते जब रजवाड़े थे तब की बात है, किसी राजा के महल के पास से गुजरा। सिपाही तो व्यवहार में तो जगे थे, मैं और मोर तोर में मोह निशा में वो बड़ा जागृत थे, और वह महापुरुष मोह निशा से बिल्कुल अलग था। वो मोह निशा में पक्के जानकार थे, मैं मेरा तेरा ही है, और महापुरुष मैं मेरा तेरा में सोए हुए थे। देखा कि महल के पास में बड़ा सुंदर स्विमिंग पूल है, गर्मी के दिन है, वो महात्मा चला गया, धड़ाक धूम जाकर स्विमिंग पूल में जंप मारा। दोपहर का समय, गर्मी के दिन, राजा शयन कर रहा है, सिपाही झोंके खा रहे। सिपाहियों को क्या पता कि स्विमिंग पूल में ऐसा धड़ाका होगा, वो तो भाले लेकर तलवार लेकर आए, कह रहे ये क्या क्या कौन है तू? बोले यार की मौज। अरे बाबा लगता है तू कैसे घुस गए इधर, ये तो राजा साहब का। बोले यार की मौज, अभी पड़ेंगे डंडे। बोले यार की मौज, बाहर निकल। बोले यार की मौज, ऐसा वो परमात्मा की मौज के साथ तदाकर हो गया था कि सिपाहियों की धाक दम की गाल गलूच उनके चित्त पर असर नहीं। वो मोह निशा में सोए हुए तो सिपाही सोच रहे कि हम गाली दे रहे, लेकिन महात्मा तत्व में ऐसे जगह कि गाली की कोई कीमत ही नहीं। जैसे सपने की वस्तुएं और सपने की बंदूकें जागृत पुरुष को क्या हानि करेगी, तुम्हारे तुम सपना देख रहे हो और बंदूकें मार रहे हो किसी जागृत पुरुष को, तो तुम्हारी बंदूकें कितनी लगेगी। सपने का पिस्तौल है, सपने की बंदूकें, और जिसको मार रहे हो वो जागृत में पुरुष है, तो क्या करेगी ऐसा। ऐसे जो महापुरुष जगा है उसका, उसको संसार के यश अपयश लाभ हानि मान अपमान गाली गलौज पूजा ये क्या बांधेगा, उसके महापुरुष के लिए तो सब खेलवाड़ है। ऐसे पुरुष ब्रह्मज्ञानी कहे जाते हैं। जो लोग गुरुवाणी पढ़े हैं सुने हैं उनको पता होता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखने वाले आखिरी दिन पूर्णाहुति के हिस्से को पढ़ते हैं और उसमें जरूर ये बात आती है, जैसा अमृत तैसी विष काटी, जैसा मान तैसा अपमान, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। जैसा मान तैसा अपमान, जैसा अमृत तैसी विष खाटी, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। वह मुक्त पुरुष है, वो मुक्त पुरुष को कौन बांध सके, कौन दुखी कर सके। दुखी होने के लिए तो आपको अपना हस्ताक्षर करना पड़ता है। कोई आदमी ने आपको कुछ कह दिया, आपके पास विवेक है तो चलो वो अपनी दृष्टि से कह रहा है, उसकी दृष्टि से ऐसा है, हरिओम तत्सत, तो आप नहीं दुखी हो सकते। लेकिन ऐसा मेरे को क्यों कहा, मैं तो ऐसा हूं नहीं, तो मैं माना शरीर को मैं मान रहे, और ये शरीर पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, और बीच की माया लग गई। शरीर के लिए दो शब्द किसी ने कड़े कहे तो परेशान हो गए, जरा दो शब्द खुशामत के कहे तो पूंछ हिलाने लग गए, क्यों कि हम इसी में जी रहे, हम इसी के साथ जुड़ गए। जो वास्तविक हम है उसका हमें पता नहीं, इसी के नाम मोह। तुलसीदास जी बोलते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखहिं स्वप्ने अनेक प्रकार। अभी स्वप्न देख रहे, आप लोग के हम माइयां हैं, आप लोग स्वप्न देख रहे हैं हम भाई हैं। वह वरना सच पूछो तो चेतन वही का वही है। यहाँ भाई होने का स्वप्न देख रहे हैं, वहाँ माई होने का स्वप्न देख रहे हैं, और उसमें माइयों में भी वैरायटी है। हूँ पटलाणी छू, हूँ वाणियण छू, हूँ सिंधण छू, अने हूँ गुजरातन छू, हूँ ब्राह्मणी छू, अने हूँ मारवाड़न छू। भाइयों में भी अनेक स्वप्ने देख रहे, ये सारे के सारे स्वप्ने हैं। इसमें हम लोग बराबर जाग रहे हैं और इन बातों में महापुरुष हो रहे हैं कि चलो ठीक है। दो प्रकार के लोगों को विशेष स्मृति नहीं रहती, एक तो जिनकी उम्र बढ़ जाती है और शक्ति क्षीण हो जाती है उनको भी स्मृति नहीं रहती, और दूसरा जो ब्रह्म रस में ऐसे खो जाते हैं कि बोलने का नाम बोल देते हैं, कहने का कह देते हैं, दूसरे क्षण पूछो तो उनके चित्त में भी उसका कोई गहरा असर नहीं होता। उस महापुरुष के चित्त में कोई असर नहीं हो रहा है और वो ऊंचे नीचे हो रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। महापुरुष संतुष्ट है, आत्मैव आत्मनः तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्तदोचते। हल्ला गुल्ला हो गया, वो सिपाही चारों तरफ स्विमिंग पूल के और तलवारें दिखाने लगे, लेकिन महापुरुष का चित्त तत्व में जगा है, इस मेरे तेरे में निश्चिंत है। आप अगर सचमुच में निर्वासनिक होकर निश्चिंत रहते हो तो प्रकृति आपके लिए नियम बदल देगी। जैसा शरीर का प्रारब्ध होगा उस प्रकार ही होगा, कोई अनर्थ नहीं कर सकता आपके आगे। आपकी हाजिरी मात्र से जो होना चाहिए वो होने लगेगा। जैसे सूर्य की हाजिरी मात्र से ऑक्सीजन बढ़ जाता है, पक्षी किलहोल करने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, भौरे मंडारने लगते हैं, आदमी उठने लगते हैं, और हमारे तंदुरुस्ती में भी कुछ बढ़ोतरी होती है। एक दो डिग्री बुखार भी सूर्य के उदय होने के समय कम हो जाता है। हर मरीज से मिलो, रात्रि को मिलो तो गहराता मिलेगा, प्रभात को सूर्योदय के समय मिलो तो उसकी गहराई में कुछ आराम होगा। सूर्य आते ही जो होना चाहिए होने लगता है, जो नहीं होना चाहिए वो रुकने लगता है। हार्मफुल बैक्टीरिया रवाना होने लगते, भूत पिशाच का डर अपने आप रवाना होने लगता है। सूर्य को मेहनत नहीं करनी पड़ती भूत को भगाने के लिए, सूर्य को मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मरीजों को तंदुरुस्त करने के लिए, सूर्य का स्वभाव। ऐसे जो निर्वासनिक पद में है, मोह निशा से जागा है, ऐसा महापुरुष अपने स्वभाव में जीता है। जो अपने आत्म स्वभाव में जीता है उसकी हाजिरी मात्र से, उसके दर्शन मात्र से, उसके वचन मात्र से जो होना चाहिए वो होने लगता है, और जो नहीं होना चाहिए वो रुक जाता है ऑटोमेटिकली। सरकार को कायदे बनाने पड़ते हैं, शराब न पियो, फिर भी लोग उस रेंज में नहीं पीते हैं तो राजस्थान जाके पीते हैं, यूपी में जाके पीते हैं, खूब पीते हैं, कसर निकालते हैं, अथवा महाराष्ट्र में जाकर पीते हैं, गुजरात में भी छुप छुप के तो हजारों लाखों लोग पीते हैं, लेकिन महापुरुष के चरणों में आ गए। और शराब नहीं पीना चाहिए तंदुरुस्ती की दृष्टि से, पवित्रता की दृष्टि से, शांति और आनंद की दृष्टि से। महापुरुष के संपर्क में आप आते जाते रहे ऑटोमेटिकली आपका शराब छूट जाएगा, फिर आपको मुफ्त में गुजरात में मिले, महाराष्ट्र में मिले, यूपी सीपी में मिले, आप नहीं पिएंगे, दुबई में मिले नहीं पिएंगे, आप अमेरिका में मिले आप नहीं पिएंगे। जो होना चाहिए वो उनकी मुलाकात से हो गया, और जो नहीं होना चाहिए उनकी मुलाकात से रुक गया। ऐसे महापुरुष ही पृथ्वी पर सचमुच सुधार करते हैं, बाकी साधारण लोग तो सुधार के नाम पर अपनी कुर्सी, अपना धन, अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं तृप्त करने लगते हैं। कोई कोई होंगे बेचारे महापुरुष के संपर्क वाले जो थोड़ी बहुत समाज की सेवा करते होंगे, उनको तो सबको धन्यवाद है। बाकी सच्चा सुधार तो उन्हीं पुरुषों के द्वारा होता है जो आत्मरामी, आत्मा आनंद में मस्त है, करे वेदांति खेल, मोह कभी ना ठग सके, क्योंकि इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, पूर्ण गुरु का ज्ञान कहता है या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जिसमें भूतानी कहा, भूतानी माना जीव जंतु, साधारण लोग। साधारण लोग क्या है, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, दुख आए तो घबराते हैं और सुख आए तो खुश हो जाते हैं। ये साधारण जीवों का स्वभाव। और मनुष्य भी अगर ऐसा ही करने लग जाए तो उस मनुष्य को भी भगवान ने भूतानी कह दिया, ऐसे साधारण में गिन लिया। लेकिन उससे अलग मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार अगर संयम करता है, संग्रह से, भोग से, विकारों से थोड़ा संयम करके आत्मा के तरफ चलता है, भगवत भक्ति के तरफ चलता है, सत्कर्म और सेवा के तरफ चलता है, तो कुछ न कुछ संयम करता है, तो आदमी धीरे धीरे संयम के बल से जागृत हो जाता है, तत्व में, ज्ञान में जाग जाता है। जिस अज्ञान से आदमी रो रहा था, दुखी हो रहा था, संयमी पुरुष का थोड़ा सा ज्ञान मिलता है तो हजारों दुखी आदमी निर्दुख होने लगते हैं, हजारों अज्ञानी आदमियों को ज्ञान मिलने लगता है, अशांत आदमियों को शांति मिलने लगती है, अभक्तों को भक्ति मिलने लगती है और नास्तिक को आस्तिकता मिलने लगती है, नुगुरों को सगुरापना होने का सौभाग्य मिलता है और सगुरों को साक्षात्कार के दिन नजदीक दिखता है। संयमी पुरुष अपने को तो तारता है लेकिन अपने संपर्क में आने वालों को भी तारता है। ऐसे पुरुषों के लिए वैदिक काल में राजे महाराजे सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे। भगवान राम के पिता दशरथ वेद व्यास जी के लिए सोने का सिंहासन बनाए, महापुरुष आए बैठे। एकनाथ जी महाराज के पास चांदी का झूला था बड़ा भारी। मूर्ख लोग सोचते थे कि यार संत ने ओड़ी चांदी ना झूला में झूला नहीं जरूर सूचे, नहीं उनको तो इच्छा नहीं है, लेकिन उन महापुरुषों से न जाने कितने कितने लोगों की जिंदगियां सुधरी है और एक एक चांदी का रुपया भी गिनो एक एक आदमी के पीछे, तभी भी उनके पास इतनी इतनी चांदी है वो बिल्कुल कम है। मेरे पास कुछ लोग आए, मेरे को कहा कि बापू शोभा यात्रा निकालने की आज्ञा दो, मैं क्या नहीं बोले बापू पूरे कडोली गांव की इच्छा है, फलाने इच्छा है, मैं क्या नहीं, खोटा खर्चा मत कर। बोले हेमावड़ी खर्चो शू जीपना बसो 500 रुपया के कतार गांव वाला ने मैं ना पाड़ी थी शोभा यात्रा के कीर्तन यात्रा ना काटो, खोटो खर्चो ना कर के बापू मैं कहीं खोटू नहीं। मेरे को पुरानी बात याद आई, इंदिरा जिस समय प्राइम मिनिस्टर थी उसका दौरा हुआ गुजरात में, तो महेसाणा में आना हुआ, तो महसाणा के लोगों ने कार्यकर्ताओं ने उनके लिए ठहरने का कुछ बंदोबस्त किया, तो वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वामी जी हमने 40,000 रुपए खर्च किए इंदिरा जी के हाथ पैर धोने के लिए बाथरूम के, लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिला, हमारे 40,000 एक लोटा पानी का अगर ढोल के जाती, अरे एक दो बूंद पानी की फेंक जाती तो भी हम समझते कि हमारा बाथरूम बनाना स्वार्थक को गया, इतना इतना फालतू खर्चा होता है, एक लोटा क्या एक कुल्ला पानी कर जाती तो भी समझते कि मेहनत वसूल। हम सोचते हैं कि राजे महाराजाओं की हम कितनी कितनी उनकी सिक्योरिटी की दूसरी तीसरी कितनी कितनी व्यवस्था में खर्च करते हैं, और जो हमारे जीवन को विकारों से, विषयों से, रोगों से, बीमारियों से, पीड़ाओं से, अशांति से बचाकर केवल इस लोक में नहीं, परलोक में नहीं, लेकिन लोक लोकांतर से पार ब्रह्म स्वरूप परमात्मा तक ले जाने की यात्रा कराते, उनको हम क्या दे रहे हैं? नगण्य है जो कुछ उनके लिए हम करते, नगण्य है, कुछ भी नहीं है। सरिता जब बहती हुई हरिद्वार आती तो लोग देखते कि गंगा का कितना मान है, कितनी पूजा हो रही है, लेकिन उन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि गंगा हरिद्वार पहुंची तो कितने सारे कष्ट सहती हुई, झेलती हुई, तब हरिद्वार होकर, हरिद्वार में गंगा होकर पूजनीय होती है। पहले तो वो सागर से तप्त किरणों के द्वारा उठाई गई, फिर बादलों में टक्करें लेती 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 वो पहाड़ों पर जा गिरी और कई महीने पड़ी रही, और फिर सूर्य के किरणों ने उसको तपाया, बाद में वो झरने होकर बही, और फिर महाराज कई चट्टानों से, कई पेड़ों से, कई पौधों से किलकिलाहट चिलचिलाहट करती हुई, रास्ता काटती हुई, टक्करें सहती हुई, रातें और दिन को यात्रा करती करती बड़े कई दिनों से, कई महीनों से उसकी तपस्या चालू है, तब वो गंगा हरिद्वार में गंगे मात होके पूजी जाती है। ऐसे संत न जाने किसी कई जन्मों के और इस जन्म में कई उपासना और साधना की, तब अब संत भगवान होके पूजे जाते, लेकिन उनका संत बनने में कितना परिश्रम है। मिट्टी का घड़ा पका है उसमें पानी डालते, घड़े का आदर करते, स्वस्तिक बनाते हैं, लेकिन उस स्वस्तिक से पूजा जाता है या घड़े में शोभा देता है, पानी भरा हुआ घड़ा शोभा देता है या घर वालों की सबकी नजर उस घड़े पर जाती है, लेकिन सबको आकर्षित करने का उसमें शक्ति कब कैसे आई? वो कुम्हार के द्वारा उठाई गई मिट्टी, पैरों के द्वारा रौंदी गई, चाक पे चढ़ाई गई, ताप में तपाई गई, धूप में सुखाई गई, बाद में निभाड़े में तपाई गई, और इतना नहीं, निभाड़े में तपने के बाद कुम्हार ने टकोरा मार के निकाला, फिर मिसेस कुम्हार ने जब माल दूसरी जगह रखा तब चेक किया, जब मिसेस कुम्हार मिस्टर कुम्हार के टकोरे खाए, इतना ही नहीं, जब बाजार में आया तो खरीदार ने एक घड़ा लेना है, उसने चार घड़ों को दे मारा जयराम जी की, और उसमें से एक आधा घड़ा लिया। ऐसे तो कई बार उस घड़ों ने टकोरे सहे, बाद में ग्राहक ने एक घड़ा लिया, वो घर ले गया, घर ले गया तो पत्नी पूछती कि कितलानू लाया, वगाड़ी ना आयो छे, छता एने वगाड़वन मन थाय छे, बापड़ो सहन करे, नौकर से सिटी कितने का लाया, बोले 5 रुपए का, कहां अच्छा है, नौकर अपने असिस्टेंट को बोलता जा घड़ा धो के आ, असिस्टेंट भी चुप नहीं रहता, वो भी तब कहीं घड़ा आदमी का आकर्षण केंद्र बनता है। ऐसे ये देह रूपी घड़ा में परब्रह्म परमात्मा रूपी अमृत भरने के लिए गुरुओं के टकोरे, माता पिता के टकोरे, धर्म शास्त्र के नीति नियम के टकोरे सहते 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 जब ये साधक सिद्ध बनता है तो बोले अरे बाप जी का तो बड़ा वट है, बाप जी को राजे लोग मानते हैं, देवता लोग मानते हैं, अरे वाह वाह वाह, संत बनने में बहुत मजा है, कर लिया संत का वेश, लेकिन अपने को तो कोई पूछता नहीं क्योंकि तुम उस प्रोसेस से नहीं गुजरे। नारायण 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 नारायण, और क्या, सीधी तो बात है। अच्छा तो वो प्रोसेस कैसा है? कठिन भी नहीं है, अटपटा भी नहीं है, असंभव भी नहीं है, केवल यह है कि जो हमारा मन संग्रह में लगा है, जो हमारा मन मोह में लगा है, जो हमारा मन संसार की नश्वर चीजों में लगा है, उस मन को ये समझा दें कि नश्वर चीजें जितनी भाग्य में होगी शरीर उतनी रहेगी, बाकी का खामखा का चिंतन है, और नश्वर संबंध कितने भी संभालो एक दूसरे को छोड़ के चले जाएंगे, तो उन संबंधों से भगवान के नाते काम करो, और भगवान को अपना आत्मा परमात्मा को प्यार करते हुए उसके विषय का ज्ञान प्राप्त करो। यहाँ का श्लोक आज का है, संपूर्ण मनुष्यों की जो रात्रि है उसमें संयमी मनुष्य जगता है। जिस संपूर्ण जीव जिसको रात्रि समझते हैं, कुछ नहीं, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, आत्मज्ञान क्या, जिसके विषय में पता नहीं, अज्ञात है, उसको वो ज्ञानी ठीक से जानता है, और जिसमें राग में द्वेष में मेरे में तेरे में संसारी लोग पक्के होशियार है, उसमें ज्ञानी भूला रहता है। तो राग द्वेष करके सुनाए जा रहे थे कि बाबा मुफत का खा के मोटा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन बाबा तो अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तुकारा से बोलते, बोले यार की मौज, अभी भाला भोंक देंगे, बोले यार की मौज, तलवार देखता है चम चम चमक रही, सिर काट के फेंक देंगे, निकल बार फलाने के, बोले यार की मौज, वो उबल रहे हैं लेकिन बाबा को कोई असर नहीं होती। जयराम जी की, क्यों भाई, दलदल में कीचड़ में गंदे जीवड़े भी होते हैं और सुंदर कमल भी होता है, ऐसे संसार के दलदल में निशा में रमने वाले तुच्छ जीवन जीने वाले भी जीव होते हैं, और संसार रूपी कीचड़ में होते हुए भी संसार के प्रभाव से पार जल कमलवत कोई ब्रह्मज्ञानी संत भी तो होते हैं, है तो वही संसार। आखिर बाबा को नहा धो के बाहर निकलना है, अब प्रकृति ने करवट ली, वो मूर्ख लोग कहीं गलती न कर बैठे, वो प्रारब्ध महापुरुष का ऐसा है नहीं, यहाँ मृत्यु का या कुछ, वो महाराज तो निर्भीक होके बाहर निकले, उसके पहले राजा की एकाएक नींद खुल गई, खिड़की से देखा शोर बकोर हो रहा है और भाले दिखा रहे तलवार दिखा रहे, राजा चिल्लाया कि ठहरो क्या हो रहा है, भागता हुआ आया, देखता कि महात्मा तैर रहे हैं और वो लोग चिढ़ रहे, बाबा को पूछा कहां से आए महाराज, बोले यार की मौज, ये क्या कर रहे, बोले यार की मौज, महाराज ये किसका है, ये यार का है, यार की मौज। राजा तो आखर साधारण आदमी से तो राजा बुद्धिमान होता ही है। वो साधारण आदमी तो बड़बड़ाहट कर रहे थे, राजा ने देखा कि कोई साधारण फकीर नहीं है, ये तो यार की मौज में ऐसा रंग गया कि यार ही यार दिख रहा है। महाराज इन मूर्खों को क्षमा कर देना, यार की मौज। महाराज आप नाराज मत होना, यार की मौज। उनको तो यार की मौज के, यार के सिवा कुछ दिखता नहीं, तो राजी नाराजी क्या। महात्मा बाहर आए, राजा उनकी अर्घ्यवाद से पूजा करता है, उस समय भी वही शांति, और मूर्ख उनको कुछ का कुछ सुनाते, उस समय भी हृदय में वही की वही शांति। मूर्ख पाप ले जाते हैं और धर्मात्मा सेवा करके पुण्य ले जाता है, लेकिन महात्मा पुण्य और पाप दोनों से न्यारे रह जाते हैं। पर ब्रह्म धर्मात्मा जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कहना निक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। पशु पक्षी पेट भरने में, बच्चा पैदा करने में जागृत है, वो भी चतुर है, लेकिन पशु पक्षी आज का खा लेते हैं, कल की फिक्र नहीं करते। मनुष्य अगर आत्मज्ञान नहीं पाता तो पशु पक्षियों से भी ज्यादा दुखी रहता है बेचारा। अगर आत्मरस मनुष्य के जीवन से निकाल दिया जाए, आत्म समझ निकाल दिया जाए, तो मनुष्य पशु पक्षी से भी ज्यादा घाटे में, क्योंकि पशुओं को पक्षियों को नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो सरचार्ज, नो जमाई प्रॉब्लम, नो दिक्री प्रॉब्लम, नो दहेज प्रॉब्लम, नो पोता प्रॉब्लम, नो पोती प्रॉब्लम, नो दोता प्रॉब्लम, नो दोती प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता पशुओं को पक्षियों को। फिर भी पशु पक्षियों से मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य में वह स्मृति है जो अपने स्मृति जहां से आती है उस स्मृति दादा को पहचानने की शक्ति मनुष्य में है, पशु में नहीं है। सत्संग सुनने की क्षमता मनुष्य में है, पक्षियों में नहीं है। लोक लोकांतर की यात्रा करने की क्षमता पशु में नहीं है, मनुष्य में है। नरक और स्वर्ग का ज्ञान समझना और पाने की और उनसे ऊपर उठने की क्षमता मनुष्य में है। कुछ इस्लामी फकीरों ने रबिया से पूछा कि तू खुदा की बंदगी क्यों करती है, क्या तुझे बिस्त जाना है। बोले खुदा करे कि अगर मैं बिस्त के लिए खुदा की बंदगी करती तो मुझे बिस्त कभी न मिले। तो क्या दोजख से बचने के लिए खुदा खोरी जाती है। बोले अगर दोजख से बचने के लिए भगवान का भजन करती हूँ तो मुझे भगवान दोजख में ही डालना। मैं दोजख से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए भजन नहीं करती और स्वर्ग में जाने के लिए भजन नहीं करती। मैं तो वो प्यारा है, उसको प्यार किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैं उसका भजन करती हूँ, भजन करने योग्य। अगर भगवान का भजन नहीं करेगा तो काम का भजन करेगा, धन का भजन करेगा, रुपए का भजन करेगा, ईगो का भजन करेगा, अपने को सजाने का भजन करेगा। और जो आदमी अहम को पुष्ट करके सुखी रहना चाहता है वो अंदर में घबराता रहता है। अहम की खुशामत तो ही थोड़ी देर के लिए आर्टिफिशियल सुख मिला, फिर जहां अहम की खुशामत कम हो गई या नहीं हुई वहां फिर दुख चालू हो गया। लेकिन जो सचमुच में भगवान का भक्त है उसकी वाह वाह होती तो भी उसको असर नहीं, और उसकी निंदा होती तभी असर नहीं। वो झंझट प्रूफ, निंदा प्रूफ, अपमान प्रूफ और मान प्रूफ होकर ब्रह्म परमात्मा जैसे मान हानि से पर है, ऐसे भगवान का प्यारा साधक और भक्त भी धीरे धीरे अभ्यास करके मान और हानि से, मोह और माया से पर हो जाता है। छठा दिन हुआ है, पुतना विष ले आई स्तन में, कृष्ण को क्रोध नहीं और द्वेष नहीं। शिशुपाल 100 गालियां देता है, कृष्ण के चित्त में चोट नहीं। व्यवहार के लिए जो कुछ करा है करते हैं, लेकिन कृष्ण का चित्त उद्विग्न नहीं होता। सोने की द्वारका डूब रही है, बेटे आपस में युद्ध करके सब समाप्त हो रहे, कृष्ण के हृदय में चोट नहीं होती। ये तो माया के बुलबुले पैदा हुए, माया में लीन हो जाएंगे। मृत्यु भी कैसी हुई, समाधि करके नहीं, सोने की द्वारका में बैठ के नहीं, जंगल में ऐसे बैठे और शिकारी ने मृग समझा और दे मारा बाह श्री कृष्ण के चरणों में। शिकारी ने देखा कि मृग लेने जाता हूँ, देखा कि मृग तो नहीं, ये तो मृग नहीं कन्हैया है। ओहो गलती हो गई, क्षमा करना। बोले कोई बात नहीं, ऐसी नियति थी, तू मौज कर। श्री कृष्ण अपने इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, और बुद्धि को अपने स्वस्वभाव में लीन करके महाप्रयाण कर लेते। हाय हाय करके चिल्ला कर उसको श्राप देकर या गाली देकर नहीं रवाना हो रहे, कहराते हुए नहीं, हंसते हंसते आए हंसते हंसते युद्ध में और सब काम में हंसते हंसते जिए और हंसते हंसते कहे। और वो सिखाते हैं कि तुम्हारे जीवन में दुख का कोई स्थान नहीं है, चिंता और भय का स्थान नहीं है, मोह का स्थान नहीं, लेकिन तुम निशा में होते ना, जैसे रात्रि में तुमको ठूंठे में चोर दिखता है, रात्रि में रस्सी में सांप दिखता है, रात्रि के समय में जो हितेशी है वो भूत जैसा दिखता है और जो चोर डाकू है वो अपना जैसा भी दिखता है अंधकार में। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह ये चोर है, लेकिन काम में सपोर्ट करने वाले तुमको, क्रोध में सपोर्ट करने वाले तुम बराबर हो। ये ठीक किया, इसको डांटो मारो ठीक किया। तुम्हें जो विकारों में पोषते हैं अथवा तुम्हारी गलती में जो भागीदार होते हैं, ऐसे मित्रों से तुरंत सावधान हो जाओ। तुम्हारी गलती को जो स्पष्ट बता सकते हैं, तुम्हारे ईगो को जो पोषते हैं, ऐसे खुशामत खोरों से सावधान रहो। लेकिन तुम्हारे ईगो को जो तोड़कर भगवान के तरफ ले जाते हैं, उनके चरणों में तो अनकंडीशनल सरेंडर होते जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। बार बार वहां जाओ जो तुम्हारा अहम तोड़कर परमात्मा के साथ तुम्हारे मन को जोड़ना चाहते हैं, उनके साथ जाओ। गीता में एक श्लोक आता है, न अतिमानिता, अतिमान की इच्छा ना रखो। जहां मान छोड़ना है, अहम छोड़ना है, उस जगह पर भी कई लोग मान की इच्छा रखते। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाहे उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। एक सेठ ने ऐसा नौकर रखा था जो सेठ को खरी खोटी सुना देता था। एक बार वो सेठ अपने वेवई के साथ कपड़े की फर्मे थी, होलसेल के दुकान थे, रिटेल के दुकान थे, अपने एक फर्म में गया जहाँ रोज जाता था पहले दोपहर के 2 बजे वेवई के साथ। साधारण नौकर जो बुहारी देता था उसने सेठ को सुनाई खरी खोटी, हम लोग तो 9 बजे आ जाते और आप 2 बजे आते, हम कमाए और तुम मुफ्त का खाओ, कब तक चलेगा ऐसा काम? सोते रहते हो क्या? दिन को सोने से बीमारी आती है और आयुष्य नाश होता है। क्या सो रहे थे कि घूम रहे थे? मेहमान आए तो मेहमान से मिलके आ जाना सही टाइम सर, लक्ष्मी आवे तो क्या है, लक्षण तो नहीं जाने चाहिए। ऐसा सुनाए महाराज वो वेवाई देखने लगता है कि ये कौन है। सेठ से पूछता है, ये केरा है, ये तुम्हारा कौन? बोले ये हमारा दुकान का नौकर है। बोले नौकर? हाँ। कितना पगार इसका? बोले इसका पगार है, इसका पगार तो 25-30 रुपया होगा। वो इसका पगार काम करने का तो उतना ही है थोड़ा सा, लेकिन बाकी लोगों के सामने भी मेरे अहम की धुलाई कर सकता है, इसलिए उसको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा भी देता हूँ। बोले क्या करते हो? बोले सब सेठ जी करते सलाम, वाह भाई वाशु, वाह भाई वाशु, वाह भाई फलाना, वाह भाई फलाना, वाह भाई फलाना, वाह भाई फलाना, में उम्र पूरी थी बिंदी, सिंधी में चौनिया चरी रन भूडे में खुश। तो वाह वाह करने वालों के बीच तो मैं जी रहा हूँ, इससे तो मेरा अहम बनेगा, इससे तो मेरी गलतियां बढ़ेगी, इससे तो मेरा जन्म मरण नहीं मिटेगा, इसलिए मैंने एक नौकर ऐसा रखा है कि संत के पास तो मैं नहीं जा सकता हूँ, तो कम से कम निर्भीक होकर मेरे को घर सके ऐसे आदमी को मैंने रखा है, और ये मेरे को झूठ से बोलता है, इसलिए इसकी मैं कीमत करता हूँ और इसको मैंने पगार एक्स्ट्रा ज्यादा। वो अपने आध्यात्मिक तंदुरुस्ती के लिए ऐसे लोग भी रखने वाले रखते थे। आप लोग ऐसा आदमी रखो, ये मेरी सलाह नहीं, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों के पास जाओ जो तुम्हारी गलती तुमको सामने सुना दे। अपमान के वक्त आप देखो अंदर क्या होता है, मीठा मीठा गप और खटा खटा चट, ये तो भाई सब करते हैं। मीठी जलेबी देखकर तो पूंछ भी कुत्ता पूंछ ही लाता है, डंडा देखकर पूंछ सीधी कर देता है मनुष्य, तो ऐसा किया तो फिर मनुष्य उनसे आगे कैसे निकलेगा। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता, सुख आए तो भूल न जाना, दुख आवे तो ना घबराना, क्योंकि आने वाले और जाने वाली चीज है, इसमें आप मत जगो। आने वाले और जाने वाली चीजों में चिपको मत, लेकिन आने और जाने वाली चीजों को जो देख रहा है उस परमात्मा में जागो, तो तुम मुनि हो जाओगे। जो मनन करके आत्म परमात्मा को पा लेता है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी है अर्थात जो आत्म परमात्मा तत्व का चिंतन करता है, अपने मन को इधर उधर की खटपट से बचा के संयम करता है, ऐसा संयमी उसमें अभी जीव भाव है, अभी वो करता है, वो संयमी जब परिपक्व होता है तो फिर तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, फिर वो मुनि बन जाता है जिसमें दूसरे लोग, जिसमें संसारी लोग जागृत हैं, उस जागृत को मुनि रात्रि देखता है, देखता है अर्थात वो दृष्टा हो जाता है, लोगों की रीत भात का, लोगों की खरे खोटे का वो दृष्टा हो जाता है। अब वो जीव नहीं रहा, वो अब संयमी नहीं रहा, वो बेसंयमी भी नहीं रहा। बेसंयमी तुच्छ जीवन है, संयमी ऊंचा जीवन है, लेकिन जब संयम है तो संयम जीव का होता है। वो अब जीव भाव से भी पार गया और भोगी भाव से भी पार गया, वो पश्यतो मुने है, वो मुनि हो गया। अब उसके द्वारा राज्य भी हो सकता है, उसके द्वारा धंधा भी हो सकता है। ऐसे कोई ब्रह्मज्ञानी है धंधा भी कर सकते हैं, ऐसे कोई ब्रह्मज्ञानी जो घर भी चला सकते हैं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी है जो युद्ध खेल सकते हैं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी जो पागल का वेश बनाकर भी जी सकते हैं। अब उन महापुरुषों को सारा संसार साक्षी भाव से वो देखते रहते और आगे चलकर साक्ष और साक्षी भाव भी नहीं रहता, वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तस्य तुलना के न चाहते, उस पुरुष का दर्शन अमोघ होता है। ऐसे पुरुष के दर्शन के लिए शास्त्र कहते कहता है कि गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेन तीर्थम कोटि फलम लभेत।